الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اصلاح نفس کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اصلاح نفس کے حوالے سے ہم نے یہ نفس کی بیماریوں کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور نفس کی بیماریوں میں پہلی بیماری جس کا تذکرہ پچھلے چند دنوں سے کیا جا رہا ہے وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کے حوالے سے مشائخ کا قول یہ ہے کہ تین چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت کی نشانی ہے، اور پہلا یہ کہ انسان آخرت سے غافل ہو، دوسرا یہ کہ جب دنیا انسان کے سامنے پیش کی جائے تو بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو دنیا سے محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہو، اور دوسری نشانی ہے کہ جب دنیا اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس دنیا کو وہ فوراً لپکے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اپنے مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے گا۔ اور مال جو ہے وہ اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرنے میں، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں، دینی کاموں میں خرچ کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، اس خرچ کرنے میں اسے تکلیف ہوگی، ایسا کرنا جو ہے وہ دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ مال خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن پاک نے اس عمل کے حوالے سے ایک فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جب تک مال خرچ نہیں کرو گے، جب تک اپنا مال دوسروں کو نہیں دو گے، تب تک نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنا مال جس سے تم محبت کرتے ہو اسے خرچ نہ کر دو۔ یہ مال کا خرچ کرنا یہ نشانی ہے، انسان کو اس دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور مال کے خرچ کرنے کو روک لینا یہ نشانی ہے کہ اسے دنیا کی محبت ہے۔ تو مال خرچ کرنے والا جو ہے وہ دنیا کی محبت سے پاک، اور مال خرچ کرنے میں اپنے آپ کو جو روکتا ہے کنجوسی کرتا ہے، یہ دنیا کی محبت سے بھرا ہوا شخص ہے۔ تو مشائخ کا قول یہ ہے کہ جتنے سجدے کر لو اور جتنی دینی کتابیں پڑھ لو، اللہ کی نظر میں نیک اس وقت سمجھے جاؤ گے جب اپنا مال دوسروں پہ خرچ کرو گے۔ اور مال دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے کوئی بہت امیر کبیر ہونا ضروری نہیں ہے، مال خرچ کرنے کے لیے دل ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، بالکل غریب تھے مگر پھر بھی خرچ کر دیتے تھے جو ان کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جن کا ایک مٹھی بھر جو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ دوسروں کی ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا کوئی شرط ہی نہیں ہے، مال خرچ کرنے کے لیے دل ہونا یہ شرط ہے۔ तो दुनिया की मोहब्बत की एक बड़ी निशानी ये कि इंसान जो है वो माल खर्च करने से कतराता है। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ माल सदका करने से तुम्हारे माल में कमी नहीं आती। जब इंसान माल खर्च करता है उसमें ऐसी बरकत आती है कि वो माल बढ़ जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जब इंसान अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा के वापस करता है, कभी कभी 100 गुना बढ़ा के वापस करता है, और कभी कभी 700 गुना, और कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो माल खर्च करना सिर्फ ये नहीं कि इंसान को नेक बनाता है, माल खर्च करना ही इंसान को मालदार भी बनाता है। और माल खर्च करने से ही इंसान पुरसुकून हो जाता है, ये भी कुरानी फैसला है कि दिल को सुकून उस वक्त तक नसीब नहीं होगा जब इंसान अपना माल दूसरों पर खर्च नहीं करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युन्फिकून अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहार, वो लोग जो अपने माल को रात में भी खर्च करते हैं दिन में भी खर्च करते हैं, सिर्रं वालानियतन छुपके भी खर्च करते हैं ऐलानिया भी खर्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ होता है ना उनके ऊपर कोई गम होता है। हजरत अख्तर सानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नवाब साहब आए और उन्होंने आके शिकायत की कि हजरत मौत से बहुत डर लगता है, दिल के अंदर बड़ी टेंशन एंजाइटी है, दिल परेशान है और मौत का खौफ बैठा है। अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत हिकमत दी, वो हकीमुल उम्मत थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम माल सदका खूब किया करो तो तुम्हारी ये जो जहनी परेशानी है, मौत का खौफ है, ये दूर हो जाए। तो वो हजरत से अकीदत रखता था वो शख्स, उसने हजरत के कहने पे पहली मरतबा अपना माल अच्छी तरह से खर्च किया, गरीबों पे खर्च किया, जरूरतमंदों पे खर्च किया, दीन पे खर्च किया, रिश्तेदारों पे खर्च किया। चंद महीने बाद आके कहता है कि हजरत वाकई ये जो मौत की वहशत थी, ये जो टेंशन, जहन जो बेसुकूनी के आलम में था, खौफ का जो तारी रहना था, खत्म हो गया। तो ने कहा हजरत आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस टेंशन को, इस परेशानी को हल कर दिया, मगर मुझे समझ नहीं आया कि माल खर्च करने से ये मौत का खौफ जो है ये कैसे खत्म हो गया। ने फरमाया कि इंसान का दिल वही लगता है जहां उसका सरमाया होता है। आपको जो मौत की टेंशन सारा वक्त लगी रहती, मौत का खौफ लगा रहता, उसकी वजह यह कि आपका सारा सरमाया इस दुनिया में पड़ा था। अब जो आपने अपना माल खर्च किया गरीबों पे, रिश्तेदारों पे, दीन पे, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका सरमाया जो है वो मौत के बाद वाली जगहों पे लग गया है, इसलिए आपका दिल जो है वो इस खौफ से खाली हो गया। तो ये पक्की बात है कि जो शख्स अपना माल खर्च करता है और माल सदका खूब करता है, वो असल नेकी का भी हकदार वही है, मालदारी का हकदार भी वही है, और दुनिया और आखिरत के सुकून का हकदार भी वही है। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक नसीब फरमाए। आज का दिन जो है ये जंग का दिन है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, और मुसलमानों की फतह के लिए दुआ करना ये लाजिम है हम पे। और सच्ची बात तो ये है कि हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लश्कर दो किस्म के होते हैं, एक वो लश्कर जिसको लश्करे गुस्सा कहा जाता है, फौजियों का लश्कर, और एक लश्कर वो होता है जिसको लश्करे दुआ कहा जाता है। और ये वो लोग होते हैं जो दुआ के जरिए से फौज की मदद करते हैं, मुसलमान मुजाहिदीन की मदद करते हैं। और ये जो दुआ है इसके अंदर अल्लाह ने असर रख दिया है। हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये जो लश्करे दुआ है ये ज्यादा अफजल है लश्करे गुस्सा से। और उसकी वजह ये कि जो फौज का लश्कर है वो तो लड़ता है तलवारों के साथ, वो लड़ता है आज के जमाने में मिसाइल और जंगी तैयारों के साथ, तो वो मदद हासिल करता है जंगी तैयारों के लिए, जंगी तैयारों से और मिसाइलों से और टैंकों से। और जो लश्करे दुआ होता है वो मदद हासिल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। इसलिए इस लश्करे दुआ की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए दुआओं का एहतमाम करें, अपना ज्यादा वक्त दुआ के अंदर लगाएं। और वैसे भी वो मालिक बहुत सखी है, अगर बहुत सारे लोग मिल के एक चीज मांगते हैं तो ये सखी की शान के खिलाफ होता है कि वो अता न करते हैं। तो दुनिया का सखी जो है वो भी पसंद नहीं करता कि अब इतने सारे लोग आके मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मैं ना दूं, तो वो तो सखियों का बादशाह है। तो बहुत सारे लोग मिलके किसी एक चीज पे दुआ करते हैं उसने वो अता कर देनी है। तो ये जंग का वक्त, ये मुसलमानों के लिए दुआ का वक्त है, ये हमारे मुल्क के लिए दुआ का वक्त है। तो जरूर एहतमाम के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के कोने कोने की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला काफिरों के दिलों में इस्लाम और हमारे मुल्क का रोब अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.